क्या बात है वाह वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है वाह क्या बात है
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا وہ درود پاک کون سا ہے آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلا جسدیہی فی الاجسادی وعلى قبره في القبور صلوا على الحبيب
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا جی ہاں آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے ادھر کے لوگ بتائیں پروگرام کا نام کیا ہے زبردست آپ لوگ بتائیے جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بتائیے آپ گھر پر ہیں اسٹوڈیو میں جی جو گھر پہ بیٹھے ہیں آپ نے بھی پروگرام میں شامل رہنا ہے کون ہے جو اچھے انداز سے پروگرام کا نام بتائے گا جی آپ صدیق بھائی
واہ کیا بات ہے
سبحان اللہ
واہ کیا بات ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا انداز اچھا انداز جی میرے بھائی آپ
واہ کیا بات ہے
جی آپ
واہ کیا بات ہے
واہ کیا بات ہے جی ہاں بھائی کو دیں بھائی
واہ کیا بات ہے
جی سب مل کر بولیں
واہ کیا بات ہے
جی ہاں پروگرام میں ہے بہت کچھ بس آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें होंगी, आप बोलेंगे यार ये अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन उसके लिए प्रोग्राम देखना होगा, और जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो आप बोलेंगे सुभान अल्लाह। जी हाँ, जो घर में दादा बैठे हैं, नाना बैठे हैं, आप ही हैं, छोटी बच्चियां हैं, जो भी घर में देख रहे हैं आप प्रोग्राम देखेंगे पूरा, तो आप बोलेंगे क्यों बोलेंगे वाह क्या बात है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है। प्रोग्राम का नाम क्या है? अच्छा, कोई ऐसी बात आ जाए सामने, बात पसंद आ जाए तो बंदा बोलता है वाह क्या बात है। तो दो चीजें आपने अपनी जबान पे रखनी है, सुभान अल्लाह और तो प्रोग्राम के अंदर बड़े ही प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं, तो शुरू करने जा रहे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी।
क्या बात है वाह, क्या बात है वाह, क्या बात है।
आज की कहानी बड़ी ही जबरदस्त किस्म की, आप सुने आपके मजे को मजा आ जाएगा, और कहानी तो अच्छी होती है लेकिन उसके सबक पर भी नजर रखना है। एक शख्स था, बहुत गरीब था, उसका एक छोटा सा कच्चा मकान था, एक बेटा था इकलौता, और एक गधा था और एक घोड़ा था उसके पास। अब ये मियाँ बीवी और ये उसका बच्चा एक कच्चे मकान में रह रहे हैं, तो एक उनको बिल नजर आया, तो कहे ये बिल किस चीज का लग रहा है, हैं सुराख सा। उसकी बीवी ने कहा जरा देख लो मुझे सांप का बिल लग रहा है, चाहे सांप ना हो। अच्छा, तो देखता है, तो जैसे ही वो देखता है तो उसमें उसको कुछ चमक नजर आती है, टॉर्च वॉच मारता है, चमक नजर आ रही है। बोले अच्छा तो निकालो, जब वो हाथ बढ़ाता है तो एक सोने का अंडा आता है, तो कुछ देर के बाद एक सांप आ जाता है, और वो सांप जो है घूम फिर रहा होता है, और फिर वो दोबारा बिल में चला जाता है, लेकिन इसके पास आ जाता है सोने का अंडा। बोलता है तो मजे हो गए, बोलता है बताना नहीं है किसी को भी कि सांप जो है सोने का अंडा दे रहा है। चंद दिन गुजरते हैं, वो कहता है यार सांप ने अंडा दिया नहीं दिया, तो फिर वो दोबारा बिल के अंदर देखता है, ओहो फिर चमक नजर आती है, तो हाथ बढ़ाता है, एक और सोने का अंडा आया। तो ये बोलता है बताना नहीं है किसी को, अब ये सांप वक्फे वक्फे से सोने के अंडे दे रहा था, अब इनके माली हालात अच्छे होने लगे, जगह नहीं छोड़ी लेकिन इसी मकान को अच्छा बना लिया, और वो बिल उसी अंदाज से रखा, अब सोने के अंडे आते रहे, ये अमीरो कबीर बन गए। अब एक छोटा सा रूम बना दिया इस जगह को, बंद करके रखते थे, और जब इसको चाहिए तो सोने का अंडा तो हाथ डालकर निकाल लिया करता। अब दिन गुजर रहे थे, तो एक दिन हुआ यूं कि सांप जो है बाहर की जानिब आया, और इनका जो एक गधा जो था उसको डस लिया, और गधा जब सांप का जहर उसके जिस्म में सराइयत किया तो गधा मर गया, तो इसको बहुत सदमा हुआ कि यार ये पालतू गधा था और ये मर गया। बोले चलो अंडा तो मिल रहा है ना सोने का, सांप ने नुकसान पहुंचाया लेकिन फायदा ज्यादा पहुंचाया है, ये कुछ भी नहीं है। तो चंद दिन चंद महीने ऐसे गुजरे, तो फिर वो पालतू घोड़ा जो था वो खड़ा हुआ था, सांप आया और घोड़ी की तेज तेज आवाज आने लगी, और घोड़ा जो है तड़प रहा, सांप ने उसको डस लिया था, अब ये सांप जाता हुआ नजर आ गया। अब चंद ही मिनटों सेकेंडों में घोड़ा मर गया, मालिक को दुख हुआ, कहा ये तो सांप ने डसना शुरू कर दिया है, शुरू में तो अंडे दे रहा था सोने के लेकिन अब ये मार भी रहा है, सांप जो है उसका काम डसना है, तो कहा ये डस भी रहा है और ये खतरनाक सांप है, तो अपनी बीवी से मशवरा करा क्या करें। बोले निकालो इसको, सोने के अंडे दे रहा है ये, और क्या नुकसान हुआ है हमारा, हम हजार घोड़े खरीद लेंगे, हजार घरे खरीद लेंगे, लेकिन ये अगर सांप चला गया मजा नहीं आएगा जिंदगी में। ठीक है, तो सांप चलता रहता फिरता रहता, लेकिन किसी को बताना नहीं है हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास क्या है, सोने के अंडे और एक सांप भी है। अभी अमीर और कबीर हो रहा है, लाइफ स्टाइल तब्दील हो गया, लेकिन ये है जहरीला। एक दिन जो है اس کا ایک خادم تھا، جو خاص خادم تھا، جو شروع سے ان کے ساتھ چل رہا تھا، یہ سو رہا تھا. سانپ نکلا اور اس نوکر کو ڈسا. اب نوکر چیخا چلایا، یہ آ گئے. او اتنا خطرناک زہر تھا اس کا، نوکر نہیں بچا، نوکر مر گیا. اب اس نے بات چیت کی، پہلے تو یہ جانوروں کو نقصان پہنچا رہا تھا، اب اس نے انسانوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اچھا کیا کریں؟ تو کہ نہیں اس کو باہر نکالو، کب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی نہ ڈس لے، تو یہ دولت کس کام کی؟ تو کہا اچھا. تو پھر وہ کہا کہ کچھ علاج کرتے ہیں. تو سانپ خود ہی غائب ہو گیا یہ سن کر کہ یہ کچھ علاج کرتے ہیں. تو پھر چند مہینے گزرے تو صدمہ بھول گئے، پھر ذہن میں آئی کہ چھوڑو، جانے والا چلا گیا لیکن سونے کے انڈے نہیں مل رہے اب. تو سانپ نے بات سن لی، تو کہا حالات اچھے ہو گئے ہیں. تو سانپ دوبارہ آ گیا، اس نے پھر بل کے اندر دیکھا، او سونے کا انڈا نکالا اور اس کو بیچنا شروع کیا. اب مال و دولت آنے لگی. اب وہ گدھے والا بھی قصہ بھول گئے، گھوڑے کا بھی بھول گئے، اور یہ نوکر کا بھی بھول گئے. ایک دن اس کا بیٹا سو رہا تھا، تو سانپ آیا اور اس نے نیند کی حالت میں اس کے بیٹے کو ڈس لیا. اب اس کا زہر جب اس کے جسم میں سرایت کیا، جسم میں آیا، تو بچہ تڑپنے لگا، تڑپ رہا ہے. اب یہ ماں باپ صدمے سے دو چار، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے فٹافٹ، لیکن بچہ نہیں بچ سکا. اب یہ دونوں میاں بیوی بولے ہمارے اندر لالچ آ گئی ہے، اب تو بچہ بھی نہیں رہا، دیگر چیزیں بھی نہیں رہیں، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ تو کہا اب اس سانپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو مار دینا چاہیے، اگر اس کو نہیں مارا تو یہ ہمیں مار دے گا. اب سانپ نے بات سنی کہ یہ جو مجھے مار دیں گے، تو سانپ دوبارہ چلا گیا. اب یہ بولے سانپ مل جائے تو ہم اس کو مار دیں. اب جب مہینے گزر گئے، پھر وہی یہ سانپ جو سونے کا انڈا دیتا ہے، تو کہا کہ لے کر آئیے. تو کہا کہ اس جگہ پہ روشنی اوشنی ڈالی، خوشبو اوشبو لگائی، کچھ دھونی اونی دی، اور کہا کہ دوبارہ آ جائے سانپ. اب یہ دونوں میاں بیوی لالچ کے اس میں چلے گئے، دنیاوی لالچ. اب یوں ہوا کہ سانپ آ گیا، اور پھر اگلے دن دیکھا بل کے اندر چمک ہے، او دوبارہ انڈا نکالا، خوشی خوشی رہنے لگے. تو کہا کہ ہو سکتا ہے سانپ کا مزاج بدل گیا ہو، اب نقصان نہ پہنچائے تو سونے کا تو انڈا مل رہا ہے. تو ایک دن اس کی بیوی سو رہی تھی، سانپ آیا، بیوی کو ڈسا اور چلتا بنا. اس کی بیوی روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن سانپ کے ذہن نے کام کیا اور بیچاری یہ بھی دنیا سے چلی گئی. اس کو اتنا بڑا صدمہ ہوا، اتنا بڑا صدمہ ہوا، نہ نوکر بچا، نہ جانور بچے، اب یہ اکیلا بچا. تو اس نے یہ بات دیگر رشتہ داروں کو بتائی، جو قریب قریب کے لوگ تھے، کہ بھائی ایسا ایسا ایک سانپ ہے. تو بولے تم بیوقوف ہو گئے تھے، جیسی تمہیں پہلا نقصان ہوا گھوڑے کا گدھے کا، تم فوراً اس کا کچھ علاج کرتے، پھر نوکر کا نقصان ہوا کچھ علاج کرتے، اس کو مارتے، یہ تو نقصان دے تمہارے لیے. لیکن چمک جو ہے اس نے اندھیرا کر دیا. وہ کہتے ہیں ہر چمکتی چیز، تو یہ سونا نہیں ہوتی، لیکن سونا تو تھی، لیکن یہ سونا کس بات کا کہ کچھ بچا نہیں. اب وہ پریشان ہونے لگا، اس نے کہا جیسی اب مجھے سانپ نظر آئے گا، اب میں سانپ کو چھوڑوں گا نہیں. اب جیسی دن گزرے، وقت گزرا، تو بیوی کا صدمہ بھی ختم ہو گیا. اب یہ تو تلا بیٹھا ہوا تھا کہ سانپ نظر آئے تو ماروں. پھر اس کے دل میں دوبارہ لالچ آئی، یہ لوگ تو چلے گئے، دولت بھی چلی گئی. تو اس نے اسی جگہ پر دوبارہ دھنی دی، خوشبو وغیرہ لگائی، اور کہا کہ سانپ آ جا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. یہ سانپ آ گیا. جب سانپ آیا، اگلے دن اس نے بل کے اندر، سوراخ کے اندر جھانک کر دیکھا، تو اب کی بار سونے کا انڈا نہیں تھا، موتی تھا، موتی جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی. اس نے نکالا، او ہو تو موتی دے رہا ہے، پہلے تو سونے کا انڈا تھا، اب موتی دینے لگا ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے موتی کو چھپا کے رکھ دیا، اور پھر لوگوں سے بات چھپانا شروع کی. تو کہا اب سانپ بدل گیا ہے، پہلے انڈے دیتا تھا، اب موتی دیتا، اب یہ ڈسے گا نہیں ہے، اس کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے. اس نے اپنے آپ کو تسلی دی. اب دن گزرتے رہے، گزرتے رہے، مہینے گزر گئے، یہ بے خوف ہو کے سونے لگا، اور اس کو پتا تھا جگہ جگہ سونے کے انڈے ہیں. اب جیسے ہی ایک دن سانپ آیا، سانپ نے اس کو ڈسا، یہ چیخا چلایا تو قریب قریب کے لوگ آ گئے، بولے کیا ہوا؟ دیکھا اس کے پاؤں میں جو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اس کا زہر یہ تڑپ رہا ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ اس جگہ پر جو ہے موتی ہے، اس جگہ پر سونا ہے، اس جگہ پر سونا ہے، ادھر دولت ہے۔ اس نے جگہیں بتائیں اور سب کچھ لا کر ان کے رشتہ داروں نے، دو صحباب نے سامنے رکھ دیا۔ پھر کہا کہ یہ دولت تجھے بچا سکتی ہے، یہ سونے کے انڈے تجھے بچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ تو کہا کہ میں دولت کے نشے میں ایسا اندھا ہو گیا، ایسا اندھا ہو گیا، لالچ میرے اندر اتنی آ گئی، اتنی آ گئی کہ میں نے سب کچھ کھو دیا اور میں آج اپنی زندگی سے جا رہا ہوں، اب یہ کچھ بھی مجھے بچا نہیں سکتی، یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ تو یہ کہ اس شخص کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ شخص بھی مر جاتا ہے۔ اب پیارے بھائیوں، یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ایک فرضی حکایت ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا یوں ہی ہے کہ انسان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے اور وہ لالچ کے نشے میں دھن ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تب بھی تیسرے کی خواہش کرے گا، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ جگہ میں نے قبرستان میں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ ابن آدم، ایک شخص اتنی دولت کیوں جمع کر رہا ہے کہ کفن میں تو جیب ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے جب جائیں گے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہ نیک اعمال، یہ ہمارا اعمال، یہ ساتھ جائے گا۔ تو کیا اگر اللہ پاک نے دولت دی ہے، اچھی اچھی راہ میں خرچ کیجیے، اسی کی راہ میں کیجیے۔ اور بعض دفعہ لالچ یہ نہیں ہے کہ پیسوں کی ہی لالچ کی جائے، اور بھی دیگر انداز سے بندے کو لالچ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، کسی کو نوکری کا جھانسا دیا جاتا ہے کہ اس سے پیسے بٹور لیے جاتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں مختلف ادارے، کمپنیاں، یہ جو ہے وہ پرکشش پیکیجز وغیرہ بتاتی ہیں، تو یہ لالچ میں بندہ آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ جو جاب کر رہا ہوتا ہے تو انہیں اچھی جاب ملے گی، تو اس جاب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ جاب بھی ہاتھ نہیں آ پاتی ہے۔ اور ایک صاحب تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو کسی نے فون کیا کہ آپ کو مبارک ہو، یہی پہلی کال آئی، فلاں بات کر رہے ہیں، بولا آپ کو مبارک ہو، آپ کو 1,000,000 روپے آپ نے جیت لیے ہیں۔ اب بندہ اس کی جیب میں پھوٹی کھوڑی نہیں، بے روزگار کئی سالوں سے، اب یہ فون آ گیا کہ آپ کو مبارک ہو، 1,000,000 روپے آپ نے جیت لیے، بولے اچھا، بولے کیسے؟ اب یہ تو کیسے ویسے تو انہوں نے گھما دیا، ایسے، بولے ٹھیک ہے، اب بتائیں مجھے کیا کرنا ہے، یہ 1,000,000 روپے کیسے ملیں گے؟ تو بولے اصل میں ہمارا پروسیجر ہے یوں ہے، آپ جو ہے 25,000 روپے جمع کروا دیں تو آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا۔ یہ ان کو اپنی باتوں میں لیا، بولے اچھا، اب یہ گھر میں کسی کو بتا نہیں رہے، جیسے اس کو انڈا مل گیا تھا، کسی کو بتانا نہیں ہے، تو یہ گھر میں کسی کو بتا نہیں رہے اور ان کی چال بدل گئی ہے۔ تو ایک بھائی کو فون کیا، بولے یار وہ ذرا 25,000 روپے دو۔ بولے ٹھیک ہے بھائی، پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں، اب پہلی مرتبہ اس انداز سے مانگے تھے، 25,000 روپے لے لیے۔ بولے کہاں جمع کروا رہے ہیں؟ بولے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں۔ انہوں نے 25,000 جمع کروا دیے۔ پھر بات چیت چلتی رہی۔ پھر انہوں نے فون کیا، بولے یاد ہے نا؟ بولے ہاں، بس آپ کا چیک وغیرہ تیار ہو رہا ہے۔ بولے کیا کریں؟ تو بولے اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، یہ دیکھیں پروسیجر ہی تو کرنا پڑے گا، آپ کو 1,000,000 روپے بھی تو مل رہے ہیں۔ بولے کیا کرنا ہے؟ بولے آپ نے 20,000 روپے جمع کروانا ہے اس اکاؤنٹ نمبر میں۔ تو پھر بہن کو فون کیا، بولے کیا حال ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے؟ بولے بس ابھی دیکھنا کیا کرنے والا ہوں میں۔ تو بولے 20,000 روپے تو بھیجو۔ بولے کیا ہو بھائی، کیا ضرورت پڑ گئی 20,000 کی، کچھ بتائیں تو، ابھی تو دو۔ اس سے بہن سے 20,000 لے لیے۔ پھر ایک قریبی دوست تھا، پھر تیسری مرتبہ فون آیا، بولے بس چیک پورا تیار ہو گیا ہے، یہ آخری مرتبہ آپ سے جو ہے کمپنی 30,000 روپے لے رہی ہے، آپ یہ دیں تاکہ آپ کا پروسیجر آگے بڑھے۔ تو قریبی دوست سے بولا، ایسے دو بس، لے لینا ایک آدھ ہفتے بعد مجھ سے، اس نے لے لیے۔ اب یوں ہوا، اب یہ بھائی بہنوں میں باتیں ہونے لگیں کہ یار یہ پیسے لیے جا رہے ہیں، پیسے کا کر کیا رہے ہیں، اور یہ گھر میں یوں رہ رہے ہیں، ابھی دیکھنا کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ بتایا تو کسی کو بھی نہیں ہے نا، لیکن ان کا انداز بدل گیا کہ ابھی اکاؤنٹ میں 1,000,000 روپے ایسے آ گئے ہیں، اب آئے گا کیا؟ تو ایک بھائی نے ان سے کہا، جو ان کا چھوٹا بھائی تھا، بولے بھائی آپ سب سے پیسے لے رہے ہو، ایسا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ خاندان میں بات پھیل رہی ہے، گھر میں بات یہ پھیل رہی ہے، آپ سب سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو بولے یار بتانے والی بات نہیں ہے، بتانا نہیں ہے کسی کو، یعنی اپنے ہی بھائی پہ بہت مشکل سے اعتبار کر رہے ہیں، کہیں اس کے ذہن میں لالچ نہ آ جائے۔ بولے بات یہ ہے، میری ایک جگہ ڈیل چل رہی ہے، 1,000,000 روپے آنے والے ہیں، بس تم میرا ساتھ دو، तो उसने समझाया, भाई ये धोखा चल रहा है आजकल, फोन पर यूं करते हैं यूं करते हैं यूं करते हैं, जेलिस हो रहा है मुझसे, जेलिस। उसको किसी खाते में ही नहीं लिया। बोले यार इनको क्या पता, बस ये आने वाले मेरे 10 लाख रुपए पे नजर है। बोले मिलेंगे तुम्हारे जो दिए हुए मिल जाएंगे तुम्हें। अब दिन गुजरते रहे, तो उनका एक और बार फोन आया, बोले अब मामला पूरा ओके हो गया है, अब ये आपने आखिरी पेमेंट जमा करवानी है। अब ये भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, बोला भाई क्या पेमेंट जमा करवानी है, ऐसे कोई होता है, मैं आपको जो इतने इतने पैसे दे चुका हूँ, अब आप ये पैसे वापसी करें। तो वो बोले कि चले मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो उसने लाइन काट दी, लेकिन लाइन कटी नहीं, लाइन काट दी, लाइन कटी नहीं। अब लाइन तो कटी नहीं थी, अभी आपस में बात कर रहे हैं ये सुन रहा है। बोले यार अब तो ये पैसे ही नहीं दे रहा है। अब इसके पूरा मामला जहन में आ गया, बोले यार किसी और तरीके से इससे मांगो, 10 लाख रुपए बोलो हम ज्यादा देंगे तुम्हें। अभी इनकी प्लानिंग सुन रहा है। अब इसकी सब समझ में आ गया। उसने सारी बातें सुनने के बाद जो है अपने छोटे वाले भाई को बुलाया, बोला भाई सही कह रहे थे तुम। बोले क्या हुआ? बोले यार वो इस तरीके से जो है मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैं भी लालच में आ गया। बोले वो तो लालच बाद में होगी, ये इनका कर्जा कौन देगा। बोले ये तो सोचा ही नहीं था। तो बाज दफा यूं होता है कि कोई भी ऐसी बात हो रही है, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा, तो आपने इन बातों की तरफ तवज्जा नहीं करने हैं। जो कुछ है इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा, या अल्लाह तेरा, माशाल्लाह ये जबरदस्त अंदाज से दोबारा, या अल्लाह तेरा, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये नहीं देखें वो कैसे जा रहा है, अपनी तरफ तवज्जा रखें, अपनी तरफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आप उस तरफ देखेंगे दुनियावी मामले में, कहते हैं ना दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखो तो तसल्ली होगी, और अगर आप दुनियावी मामले में अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो बेचैनी रहेगी, बेचैनी। और दीनी मामले में, नेकियों के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखें, ये नमाज़ें पढ़ रहा है, ये इबादत कर रहा है, तो मैं भी इस तरफ आऊँगा। अल्लाह पाक हमें अच्छी लालच अता फरमाए, बुरी लालच से, लालची लोगों से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये थी आज की कहानी और इसका सबक। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बातें हैं कुछ खास।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
जी माशाल्लाह आप लोग ही जानिब आएंगे, क्या क्या बातें बता रहे हैं। जी मेरे भाई आप,
जिंदगी 4 दिन की है, 2 दिन तुम्हारे साथ, 2 दिन तुम्हारे खिलाफ है। जब तुम्हारे खिलाफ है तो सबर कर, जब तुम्हारे साथ है तो शुक्र कर।
जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, अच्छा आए या बुरा, अच्छे पर भी खुश होए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और बुरा वक्त आ गया तो आप सबर करें। और कोई बात, क्या नाम है आपका?
असगर अली अतारी।
चलें जी आप बताएं।
वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़ जाए और इंसान उससे गिर जाए।
माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बड़ी प्यारी सी मिसाल है, आप ही आ जाए। ये भी नीचे बैठे हुए, मैं भी नीचे बैठा हूँ, ठीक है जी, हम दोनों नीचे बैठे हुए, ठीक है। अगर मैं इनको उठा रहा हूँ तो मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, और अगर मैं इनको नीचे करने की कोशिश करूँगा तो खुद भी नीचे हो जाऊँगा। तो हमने लोगों को उठाने वाला करना है और बिठाने वाला करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। और कोई बात?
वालिदैन के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं मगर बदल जरूर जाती है।
कुछ लोग जिंदगी में खास होते हैं, वो चले जाते हैं, जिंदगी रुकती तो नहीं है, बंदा जी रहा होता है लेकिन फिर जिंदगी में मजा नहीं आ रहा होता। जी माशाल्लाह, भाई को दें।
हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।
दो अच्छी बातें बताई हैं, एक तो सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है?
हाथ।
ये हाथ है, ठीक है, दूसरों की मदद करें। ये हाथ अच्छा है मेरे साथ, ये हाथ, ये हाथ अल्लाह पाक ऐसा रखे, और ऐसा हो तो कब हो, अल्लाह ताला की बारगाह में उसी से मांगे। माशाल्लाह जबरदस्त। और कोई बात? चले जी।
अपने ख्यालों की हिफाजत करो, ये अल्फाज बन जाते हैं, और अल्फाजों की हिफाजत करो, ये किरदार बन जाते हैं, और अपने किरदारों की हिफाजत करो क्योंकि ये पहचान बन जाते हैं।
तो ख्याल अच्छा करना है, तो पहले ख्याल अच्छा करना है, अच्छे अच्छे ख्याल जहन में लेकर आना है। माशाल्लाह, पीछे वाले भाई जबरदस्त।
जबान में अड्डी नहीं, अड्डियां तोड़वा देती है।
वो शानदार और जानदार बात कर दी, जबान में अड्डी लेकिन ये कैसे तोड़वा देती है। हाँ, जबान से किसी को बुरा कहा, लड़ाई हो गई, किससे कहा, तो उसने पंच लगाया, पिटाई हो गई तो हड्डियां टूट गई। तो ये जबान जो है, बोला जबान से था, कोई ये नहीं बोलेगा जबान निकाल बाहर, तूने जबान से कहा था। जबान तो सेफ है एकदम, जबान को कुछ नहीं होता, लेकिन बदन की हड्डियां टूट गई। तो बहुत प्यारी बात, जबान में हड्डी नहीं होती लेकिन ये हड्डियां, और जबान में हड्डी नहीं है और यही जबान जो है, बाद दफा बहुत अच्छी अच्छी बातें जबान से निकल जाती हैं, इनाम और इकराम से नवाज दिया जाता है, बहुत अच्छी बात। इसी जबान से तो अल्लाह तआला का जिक्र कर रहे हैं, जो सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह पाक उसका जन्नत में दरख लगा देता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है उसका भी दरख लग जाता है, जो अल्लाह अकबर कहता है उसका भी दरख लगा दिया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अस्कार जबान से अदा कीजिए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया कौन सा अमल अफजल है, इरशाद फरमाया हुस्ने अखलाक।
माशाल्लाह, हुस्ने अखलाक से पेश आइए, अच्छे अंदाज से बातचीत कीजिए। और कोई बात?
फरमाने सजीदी अमीर अहले सुन्नत के, करने वाले कामों में लग जाओ वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे।
वाह क्या, करने वाले काम करो वरना ना करने के कामों में लग जाओगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छे अच्छे कामों में लग जाए।
रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना भी सदका है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये इतनी प्यारी नेकी है, इतनी प्यारी नेकी है, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं कोई आपको चीज नजर आ जाए, बाज दफा आपको होता होता है इस चीज से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो बाज दफा बंदा आगे बढ़ जाता है तो कहता है वो तो पीछे रह गए, पीछे वाला हटा देगा। आप चंद कदम पीछे चल के जाएं, ये पीछे नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला ने चाहे ये पीछे कदम जो आप बढ़ा रहे हैं यही जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे। एक शख्स को अल्लाह ताला ने इस वजह से वक्त दिया कि एक झाड़ थी, उसने इस वजह से हटा दी थी कि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, अल्लाह पाक ने इसी सबब से उसको बख्श दिया। न जाने कौन सी बात, न जाने कौन सी नेकी से अल्लाह पाक राजी हो जाए। तो किसी नेकी को आपने छोड़ना नहीं है, किसी भी नेकी को हमने छोड़ना नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और कोई बात? आप क्या कहेंगे मेरे बच्चे?
हमारे आखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मायने, इनकी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे।
सुभान अल्लाह, आपकी जानिब,
इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी,
इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी। माशाल्लाह, इज्जत दें इज्जत लें, प्यार करोगे प्यार मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं हम तो भाई ऐसे हैं कि हम तो शरीफों के साथ शरीफ हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हम भी अच्छे हैं, अगर कोई खराब है तो हम भी खराब हैं। नहीं नहीं नहीं, शरीफ आदमी सब जगह शरीफ है, अच्छा आदमी सबके साथ अच्छा ही है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करे तो हमने भी अच्छा करना है, अगर कोई हमारे साथ खराब करे तो हमने उसके साथ भी अच्छा ही बर्ताव करना है, ठीक है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला के घर में चोरी हो गई, तो लोग आने लगे, हजरत हजरत बड़ा दुख हुआ, तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, बोले हजरत घर में चोरी हो गई अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो बोले देखो तीन तरीके से शुक्र हुआ। नंबर वन, चोर आया आधा माल ले गया, आधा तो बचा हुआ है, बोले अल्लाह ताला का शुक्र है। बोले दूसरा, तो बोले जलील और रुस्वा तो चोर हुआ कि लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं, मेरे साथ तो लोगों की हमदर्दियां आ गई हैं, बोले शुक्र अदा ना करूं। बोले तीसरा, बोले चोर आया माल लेकर चला गया, अगर शैतान ईमान लेकर चला जाता तो, ईमान तो है तो मुझ पर शुक्र है। तो ये कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ठीक है। अगर कोई हमारे साथ खराब भी करता है तो हमने उसके साथ खराब नहीं करना। जी हजरत, आप क्या कहेंगे?
कहते हैं कि ऊंचाई हासिल करनी है तो बाज बनो, लेकिन धोखे बाज मत बनो।
माशाल्लाह, बाज धोखे बाज माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, और आप भी जो घर पे बैठे हुए आपके भी जहन में कोई अच्छी सी बात आ रही होगी तो ठीक है, आप अपने बराबर वाले को बता दें, बच्चे के जहन में आ रही होती है यार मुझे भी बात याद आ गई, तो अच्छी बात आप अपने बराबर वाले को बता दें। तो इसी तरह प्रोग्राम आप देखते रहे, प्रोग्राम का नाम है माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ, अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ज़ियारते।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
आज मैं आपको बहुत ही खास ज़ियारत के बारे में बताऊंगा, और वो ज़ियारत है मस्जिद जिराना। जिराना की निस्बत कुरैश की एक औरत की तरफ है जिसका लकब जिराना था, जीम के नीचे जेर है, जी इराना। क्या जी? जी इराना। अवाम यहाँ से उम्रा अदा करने को बड़ा उम्रा कहते हैं। मस्जिद जिराना मक्का मुकरमा से
26 किलोमीटर दूर है। कितना कितना दूर है? 26 किलोमीटर है। इस मस्जिद को ये एजाज हासिल है कि फतेह मक्का के बाद हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम से उमरे का अहराम बांधा था। कैसा प्यारा मंजर है कि प्यारे अकरम इस जगह से उमरे का अहराम बांधना है। अल्लाह पाक हमें भी बांधना नसीब फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी पर यहाँ क्याम किया और यहीं माल गनीमत भी तकसीम फरमाया सहाबा किराम अली रिज़वान में। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से ही उमरा किया, यहाँ 17 दिन कमोबेश यहाँ क़याम फरमाया। अब भी बाद उशाक मक्का मुकर्रमा से यहाँ आकर एहराम बांधते हैं जिससे लोग बड़ा उमरा कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उमरा रातों रात किया था, किसी को इत्तला ना की थी। सहाबा इकराम अली रिज़वान ने इसके बाद दूसरे वक्त में उमरा किया, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा इकराम ने भी यहाँ से उमरे की नियत की। हजरत यूसुफ बिन माहिक रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाते हैं मकाम जेराना से 300 अंबिया इकराम अलैहिम सलाम ने उमरे का अहराम बांधा। अंबिया इकराम 300 अंबिया इकराम ने उमरे का अहराम बांधा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेराना पर अपना असा गाड़ा जिससे पानी निकल आया जो निहायत ही ठंडा और मीठा था और ये आज एक कुएं की सूरत में मौजूद है। तो आप जेराना के एक गेट से निकलेंगे तो आपको ये कुआं मुबारक नजर आ जाएगा। जब आप जाएं तो मालूम कीजिएगा भाई ये कहाँ है कुआं, तो कोई ना कोई आपको बता देगा, तो उसकी जियारत कीजिए। अगर पानी मुयसर हो जाए तो पानी भी पीजिए। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हजरत शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाहि ताला ने मुझे ताकीद फरमाई, मुझे ताकीद फरमाई कि मौका मिलने पर जेराना से जरूर उमरे का अहराम बांधना कि ये ऐसा मुबारक मकाम है कि मैंने यहाँ एक रात के छोटे से हिस्से में 100 से जायद मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। और उनका मामूल था उमरे का अहराम बांधने के लिए रोजा रख कर पैदल चलकर मस्जिद जेराना जाया करते थे। यानी एहतमाम कितना, रोजा रखा है 26 किलोमीटर दूर, ठीक है वहां अहराम बांधने के। तो जो जायरीन है अल्लाह पाक हम सबको जाना नसीब फरमाए। तो माशाल्लाह ये एक जियारत के बारे में हमने आपको कुछ मालूमात अर्ज की, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। तो सेगमेंट है जियारत है जी, इसका तरीकेकार ये होगा, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है मदीने मुनव्वरा जी। इसका तरीकेकार ये होगा जहां मक्का मुकर्रमा लिखा हुआ है वहां आपने जियारतें लगानी है। जिस तरह के ये सुभान अल्लाह पहला कार्ड ही कौन सा आ गया, जियारत कीजिए, जो कौन सा मकाम है, इतनी सारी जियारतों की तस्वीर है लेकिन जैसे ही मैंने कार्ड उठाया तो कौन सा कार्ड हाथ में आ गया, अल्लाह पाक जाना नसीब करे। तो ये मस्जिद जेराना आप देख रहे हैं, ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मस्जिद जेराना ये कहाँ की जियारतों में शुमार किया जाएगा, मक्का से दूर है 26 किलोमीटर दूर है, अगर आप इधर लगा देते हैं तो हम शुमार कर लेंगे। मक्का मुकरमा की जियारत है या उसके अरीब करीब की जियारत है आपने इस वाले पोर्शन में लगानी है, और मदीने मुनव्वरा की जियारत है आपने इस वाले हिस्से में लगानी है। तो दो ऐसे इस्लामी भाई चाहिए जिनको इन जियारतों के बारे में मालूम हो, आसान आसान जियारत है, कौन कौन आएगा, एक आप आ जाए, आपकी हाजिरी हुई है, अब भी आए जी माइक ने जी। आपका नाम?
शुएब अहमद।
शुएब अहमद, आपका भाई?
जहीर अहमद।
जहीर अहमद, एक तरफ है शुएब भाई एक तरफ है जहीर भाई, आपकी हाजिरी हुई है?
नहीं हुई।
नहीं हुई,
नहीं हुई।
आपकी?
नहीं।
अल्लाह पाक जल्द अज़ल फरमाने,
आमीन।
ठीक है, इन्होंने भी जागती आंखों से
नहीं
वो जियारतें नहीं की लेकिन उन जियारतों का करीब से तस्वीर की सूरत में देखेंगे। अब कौन सी जियारत कहाँ है ये आपने तस्वीर में लगाना है, तरीकेकार आप समझ गए। कौन जीतेगा?
जिसके नसीब।
हाँ ये बात भी है जी, ये तो बोल रहे हैं
कोशिश करूंगा मैं ही जीतूं,
मैं ही जीतूं, ये कह रहा हूँ कोशिश करूंगा मैं ही जीतूं। अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा कौन जीत रहा है। ठीक है चलें जी शुरू कीजिए, एक मिनट का आपके पास वक्त है। कोई ऐसा नाथ खां शेर पढ़ दें जिसमें ज़ियारत आता हो या इन ज़ियारतों से मुतालिक कोई शेर हो, क्या पढ़ेंगे?
या रसूल अल्लाह तेरे दर की
माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते हैं भाई। वैसे टाइम ऊपर हो गया था, अब देखते हैं। नाम?
शुएब अहमद।
शुएब भाई, ये क्या लिखा हुआ है? मक्का मुकर्रमा मस्जिद जेराना, ठीक है। गारे हीरा, आवाज कुछ कम आ रही है, शायद लोगों को मालूम ना हो, ये मक्का मुकर्रमा के करीब है, ये भी शुमार कर लेते हैं। हजरत असवद कहाँ है?
मक्के में।
खाने काबा?
मक्के में।
जबले उहद?
मक्के में।
मदीने में? जबले उहद कहाँ है?
मदीने में।
मदीने में। गारे सोर?
मक्के में।
गारे सोर वो है जहाँ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला को सांप ने डस लिया था, ये वाक़या यहाँ पेश आया था। मीना? मक्के मुकर्रमा में शामिल कर लेते हैं ज़ियारतों में। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार कहाँ है? मदीने पाक में, ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। जन्नतुल बकी, ये मदीने का कब्रिस्तान है, और जन्नतुल माला मक्के शरीफ का कब्रिस्तान है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार कहाँ है? बगदाद शरीफ में, ठीक है जी। सुनहरी जालियां?
मदीने।
विलादत गाहे मुस्तफ़ा? मक्के में। रोज़तुल जन्ना, इसको लोग कहते हैं रियाजुल जन्ना। मस्जिद कुबा, इमाम आजम का मज़ार बगदाद शरीफ में। चलें जी, अब देखने कितने नंबर हासिल किए। 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब इस तरफ आते हैं जी, माइक दीजिए भाई। नाम?
जहीर अहमद।
जहीर भाई, हजरत अली रजी अल्लाह तआला का मजार कहाँ है? ठीक है जी। जबले रहमत? मक्के पास, ठीक है, उसकी ज्यारत में, जबरदस्त। इमाम हुसैन रजी अल्लाह का मजार, ये तो मशहूर है, करबला मशहूर है, मक्के पाक में नहीं है जी, ये भी मिस्टेक हो गई आपसे। गारे हिरा? सलमान फारसी रजी अल्लाह का मजार। खाने काबा? मस्जिद अक्सा फलस्तीन? मस्जिद जुलहलेफा मदीने में। चलें इसको शुमार कर लेते हैं, ठीक है, मदीने की ज्यारतों में। ये यहाँ से जैसे मस्जिद जेराना से एहराम बांधते हैं, तो इधर से भी जो है, जो मदीने से जा रहे हैं मक्के शरीफ, तो यहाँ से जो एहराम बांधेंगे उम्रे की नियत करेंगे, मीकात है ये मशहूर मीकात है। चलें इसको शामिल कर लेते हैं मदीने में, ठीक है। बाबुल बकी, ये बाबुल बकी समझ रहे हैं, ये दरवाज़ा है, क्या है ये? इतना प्यारा दरवाज़ा है, इतना प्यारा दरवाज़ा है, जब आप इस दरवाजे से 10 या 12 कदम चलते हैं तो सीधे ही जाने सुनहरी जालियां आ जाती हैं। प्यारे आकाशों का मदार पुनर्वार, ये मदीने में। गारे सोर? मक्का पाक में। जन्नतुल बकी? मदीना। अब देखते हैं कितने नंबर हासिल किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आ जाइए जी, आ जाइए जी, आ जाए, आप भी आ जाए। कौन जीता?
शुएब भाई।
शुएब भाई जी, अब आप बताएं नादरीन को, ये हमारे दरमियान मुकाबला हुआ और ये सेगमेंट जीत लिया है।
हमारे बीच सेगमेंट हुआ जिसमें ये शुएब भाई मुझसे जीत चुके हैं।
मुबारकबाद।
मुबारकबाद।
गले गले लगे, गले गले लगा के शुएब भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ रखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुएब भाई ने पहली पोजीशन हासिल की और दूसरी पोजीशन हासिल की हमारे प्यारे भाई जहीर भाई ने। जी प्रोग्राम है, अब आखिरी सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है मिदहत रसूलुल्लाह की, माशाल्लाह। तो ये होगा नात खानों के दरमियान मुकाबला। तो मैं चाहूंगा सिद्दीक भाई आप आगे की जानी आ जाएं, आप भी आगे की जानी आ जाएं, और इस तरफ के लोग इस तरफ आ जाइए, आ जाइए जरा, आप लोग भी इधर आ जाइए।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
सेगमेंट है मिदहत, मिदहत रसूलुल्लाह की। सिद्दीक भाई और अब्दुल मालिक भाई, तरीके कार ये होगा, एक शेर मैं पढ़ूंगा और मैं उसमें से कोई लफ्ज बता दूंगा, तो आपने कोई ऐसा कलाम पढ़ना है जिसमें ये लफ्ज आता हो, फिर आप जैसे ही आप शेर पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज का डिसाइड हो जाएगा, फिर आपको लफ्ज दिया जाएगा, आपने ऐसा शेर पढ़ना है वो लफ्ज आता हो, तरीके कार समझ गए। اگر آپ نہیں سنا سکے تو 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا، 5 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے لفظ کو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی شعر آ رہا ہے صدیق بھائی آپ کے لیے، اس میں سے لفظ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے لفظ ہے دل، دل
دل سے مل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل سے مل کی طرح لوٹ رہا ہو، پیلے پتھر کو تیرا
مالک بھائی تیار ہیں؟ لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو دل، آپ کو بھی دل دیا گیا،
میرا دل
جنت 5 4 3 2 1 آپ کے آئے ذہن میں پڑھیے
باغ جنت کے بہرے
فیصلہ ہو گیا ہے, یہ مقابلہ جیت گیا ہماری صدیق بھائی کی ٹیم نے. اور دوسرے نمبر پر آئے ہیں ہمارے عبد المالک بھائی کی ٹیم. اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے اور جاتے آتے کلام پڑھیں گے, واہ کیا بات ہے مدینے کی,
واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا.
واہ کیا بات ہے, 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 واہ کیا بات ہے.